नमस्कार। भड़काऊ बयानों और उससे समाज में फैलते जहर पर सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को नसीहत देने की कोशिश की जो इसके बढ़ावे के लिए जिम्मेदार हैं। बर्खास्त बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कोर्ट में याचिका दी थी कि अन्य राज्यों में उन पर जो एफआईआर हैं उनको दिल्ली लाया जा सके। अब इन पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने खरी खरी सुनाई, कहा कि उनके बयान ने देश में भावनाओं को भड़काया है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि टीवी डिबेट किस मुद्दे पर था, एजेंडा भड़काने के लिए? नुपुर शर्मा की देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। बयान देने के बाद कहा, मैं वकील हूं, ये शर्मनाक है। नुपुर शर्मा को देश से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा का व्यवहार उनके अड़ियल और अहंकारी चरित्र को दिखाता है। उन्हें लगता है उनके पीछे सत्ता है, वे कुछ भी कह सकती हैं। उन्हें लगता है वे कानून का सम्मान किए बिना कुछ भी कह सकती हैं। दिल्ली में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर हुई, उसका क्या हुआ? दूसरे के खिलाफ एफआईआर तो तुरंत होती है गिरफ्तारी, आपके खिलाफ एफआईआर तो किसी ने छूने की आपको हिम्मत नहीं की। नुपुर शर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका वापस ले ली। तो इस मसले को समझने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर फैजान मुस्तफा हैं, कानूनविद हैं। फैजान सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणियां की, हमारे समाज में जो जहर फैल रहा है शायद उस पर लगाम लगाने की कोशिश है, कैसे देख रहे हैं आप आज कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को?
देखिए निधि जी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी समाज में रहते हैं, तो आम तौर से तो अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध बहुत सी एफआईआर हुई हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सब मिलाकर एक जगह पे कर दी जाए। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आज वो काम करने की कोशिश की है जो समाज में तनाव समाप्त करे। तो सुप्रीम कोर्ट की जो आज सख्ती थी और जस्टिस सूर्यकांत जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे थे या प्रश्न पूछ रहे थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट कोशिश ये कर रही थी कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए। मैंने बार बार लिखा है इस पे कि ये जो डिफेमेशन ऑफ रिलीजन्स का कानून है, ब्लास्फेमी, ईश निंदा, ये जनतंत्र में एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव में इसको क्राइम नहीं बनाया जाना चाहिए। धर्मों की मान हानि जो है वो जुर्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन समाज में ईर्ष्या और द्वेष और कम्युनिटीज के बीच एनिमिटी, हेट स्पीच में सख्ती होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर से कहा है कि बहुत ज्यादा टीवी एंकर्स धर्म को डिस्कस करते हैं, जो मैटर्स को डिस्कस करते हैं, किसी पर्टिकुलर एजेंडे को फर्दर करने के लिए डिस्कस करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत सी चीजें कह दी जो लोगों के दिलों में थी कि टीवी एंकर्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रहे हैं, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का जाहिर है कि मकसद नहीं है। टीवी एंकर्स का काम यह है कि वो एक डिबेट इस तरह की करें जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन मिले। यहां पे ये भी एक बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी कि जिस तरीके से समाज में रिलीजन हावी हो गया, उदयपुर की इतनी दर्दनाक इंसिडेंट हुआ कि एक टेलर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरी आए। सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि वो माफी मांग ले, और मैं समझता हूं कि देश के सारे नागरिकों को आम तौर से और मुसलमानों को उस माफी के बाद इस मामले को समाप्त करना चाहिए। यदि हमारा प्रॉफिट मोहम्मद में यकीन है तो प्रॉफिट मोहम्मद रहमत और मर्सी के मैसेंजर थे। वो इस तरीके की चीजें जिसमें वॉयलेंस हो और किसी को मार दिया जाए, इसको कभी भी अप्रूव नहीं कर सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो काम करने की कोशिश की है जो आमतौर से सिविल सोसाइटी को करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए, कि एक अगर कोई कंट्रोवर्सी हो रही है तो उसकी लीगैलिटीज में जाए बिना उस कंट्रोवर्सी को खत्म कर दिया जाए। आपको मालूम है कि इस पूरे मुद्दे पे भारत की विश्व के कई देशों ने निंदा की, तो सुप्रीम कोर्ट वो सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने आज इस तरीके की टिप्पणी की जो मैं समझता हूं कि स्वागत योग्य है। और सारे एंकर्स को इससे एक सबक लेना चाहिए कि टीवी के जो रूम्स हैं उनमें लोगों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि उनमें डिवीजन करने के लिए। और देश के नागरिक भी इस बात से एक हिस्सा लें, क्योंकि जिस तरीके से इस एंकर को इंसाइट किया गया था कोर्ट ने कहा वो भी हमने देख लिया। तो जो ये लोग जाते हैं टीवी पर, बहुत से लोग, कई मौलाना लोग भी जाते हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि किसी भी धर्म के बारे में इस तरह की टिप्पणी ना करें। जो शिवलिंग के सिलसिले में कुछ लोगों ने टिप्पणियां की वो बहुत निंदनीय है, और उस तरह की टिप्पणी किसी भी धर्म के बारे में किसी भी नागरिक को नहीं करनी चाहिए, खास तौर से मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके धर्म में साफ तौर से मना किया गया है कि आप किसी भी दूसरे धर्म के पैगंबर या खुदाओं के बारे में कोई गलत बात नहीं कहेंगे।
बिल्कुल फैजान साहब, कोर्ट ने पुलिस से भी गंभीर सवाल किए, कहा है कि क्या हुआ FIR का, औरों पर तो कार्रवाई करने में आप बिल्कुल भी समय नहीं लगाते हैं।
नहीं, ये देखिए, ये एक पुलिस के काम पर और सरकार के मामले पे भी एक टिप्पणी थी, जिसका अर्थ साफ साफ ये था कि कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो इस तरीके की एडवांटेज लेते हैं कि पुलिस उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती, लेकिन अगर वो FIR किसी और के विरुद्ध करते हैं उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि हमारी पुलिस रूल ऑफ लॉ को फॉलो करे, किसी के ऊपर भी FIR हो तो उस FIR पे कार्रवाई हो। साफ साफ जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल पूछा कि आपके ऊपर कब FIR हुई, आपने कब FIR की, और उनका कहने का अर्थ यही था कि अगर इस केस में, मेरी तो पोजीशन ये है निधि जी कि ब्लास्फेमी क्राइम नहीं होना चाहिए, लेकिन आज देश में वो क्राइम है। अगर निपुल वर्मा की गिरफ्तारी इस मामले में हो जाती तो वो शांति हो जाती, ना प्रोटेस्ट होती, ना घर बुलडोज होते, ना किसी की हत्या इस तरीके से होती। लेकिन मैं साफ कर दूं कि नुपुर शर्मा के कहने या पुलिस के कार्रवाई ना करने से कोई जस्टिफिकेशन क्रिएट नहीं होता किसी भी इंसान को मारने के लिए। जो उदयपुर में हुआ वो बिल्कुल गैर इस्लामी और इलीगल है और बहुत ही गलत चीज है, ऐसी चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये इफ एंड बट के साथ हम नहीं कहना चाहते, हम साफ तौर से कह रहे हैं कि जो उदयपुर में हुआ वो बिल्कुल गलत था, जहां पे भी पत्थर चले वो बिल्कुल गलत था, जहां पुलिस ने एक्सेस कर गोली चला दी, एक बच्चे की डेथ हो गई झारखंड में, वो चीजें भी अच्छी नहीं है। हमें समाज में शांति बनाए रखने के लिए जरा पेशेंस से काम लेना चाहिए, और पुलिस को बिल्कुल ये शो नहीं करना चाहिए कि वो किसी तरीके से पार्शियल है किसी के भी फेवर में। सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि पुलिस अपना काम सारे नागरिकों के साथ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के साथ करें।
जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर और अहम बातें तो कही हैं, क्या कड़वे बोल बोलने वाले इन प्रवक्ताओं पर इस सबसे लगाम लगेगी?
इस पे बस उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अक्सर सुप्रीम कोर्ट की बातें सरकारें भी नहीं मानती, प्रवक्ता लोग कितना मानेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन बहुत नोबेल था। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि लॉ की लड़ाई होती रहे, FIR पे कार्रवाई हो, उन्होंने ब्लास्फेमी की है या नहीं है कोई लॉ कोर्ट उसे डिटरमिन करे, लेकिन ये कि समाज में एकदम से शांति हो जाए, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हुए अपने टीवी चैनल पर जाकर माफी मांग लें विदाउट इफ एंड बट, तो मैं चाहूंगा कि इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए।
बिल्कुल, माफी मांगी जाए, अब देखना होगा किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जाएगा। आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में, और अब हम रुख करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र को नई आगामी सरकार ने, दो शीर्ष नेता तो वहां पर मिल गए हैं, लेकिन वहां की राजनीति अभी भी रोचक बनी हुई है। बीजेपी ने सरकार बनने पर जश्न का ऐलान किया, लेकिन बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस इस जश्न का हिस्सा नहीं हुए, क्योंकि वो एक बैठक में व्यस्त हैं। हालांकि पार्टी ने उनके नाम के नारे और बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर्स वहां पर लगाए। दोपहर तक सफाई के तौर पर राज्य में जो बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने कहा कि बाला साहब का सपना था कि आम शिवसैनिक जिसने पसीना पार्टी के लिए बहाया है वो मुख्यमंत्री बने। साथ ही एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, प्रशासनिक काम आपको संभालना होगा। तो देवेंद्र जी ने नेतृत्व से पूछा, और उसके बाद बहुत बड़ी बात है कि वो इस पद को संभालने के लिए तैयार हो गए। बहरहाल, उद्धव ठाकरे उन्होंने हथियार नहीं डाले हैं, वो 16 विधायकों पर रोक की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लेके गए जो खारिज हो गई, लेकिन फेसबुक लाइव पर उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए सौदेबाजी हुई है, बीजेपी वादा पूरा करती तो उनका सीएम होता, शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है, मुंबई के पर्यावरण से ना खेले। तो यहां आपको एक और चीज बता दें कि मुख्यमंत्री शिंदे आज सुबह गोवा गए थे, अपने विधायकों से मिले थे, उनकी वापसी हुई, उनके विधायक अब कल वापस आ जाएंगे। 3 और 4 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे का फ्लो टेस्ट होगा और कल महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन हो रहा है। इधर आपको यह भी बता दें कि शरद पवार को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिला है और ये नोटिस 2004 के लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे को लेकर भेजा गया है। तो आइए सुन लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा।
कि ज्या पद्धतीने सरकार अस्तित्वात जे आलेलं आहे हे सरकार माझ्याबरोबर माननीय अमित शहाने जे ठरवलं होतं मातोश्रीमध्ये तो शब्द जर का त्यांनी पाळला असता तर हे शानदारपणाने सरकार आलं असतं। 2.5 वर्ष झालेली आहेत, 2.5 वर्षापूर्वी एकतर भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री झाला असता किंवा शिवसेनेचा झाला होता असता, मी तर तेव्हाही सांगितलं होतं की शिवसेनेचा मुख्यमंत्री पहिल्यांदा झाला तर त्या मुख्यमंत्र्याची सही, त्याच्यानंतर पक्षप्रमुख म्हणून माझी सही आणि त्या पत्राचा मजकूर हा असेल की आज शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होतो आहे आणि हा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री म्हणजे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आमच्या ठरलेल्या कराराप्रमाणे या तारखेला पाय उतार होईल, हे पत्र तयार करा आणि हे पत्र मंत्रालयाच्या दाराशी होल्डिंग करून लावा म्हणजे कोणाही पासून हा करार गुप्त राहिला नसता। ठीक आहे,
तो महाराष्ट्र की सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वीराज जी समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि महाराष्ट्र को नए सीएम और डिप्टी सीएम तो मिल गए हैं, बावजूद इसके उद्धव ठाकरे की कोशिशें जारी रही हैं, विधायकों के मुद्दे पर कोर्ट में गए हैं, विश्वास मत में शामिल ना हो सके लेकिन खारिज हुई है याचिका, झटका है एक और ये उद्धव ठाकरे के लिए।
नहीं देखिए, ये कोई एक अलग से घटना में नहीं देखी आपको कि पूरा जो ऑपरेशन हुआ है ये इसका ऑर्केस्ट्रेशन दिल्ली से हुआ है, इसके मुख्य सूत्रधार दिल्ली में बैठे थे, जो आप जानते हैं कौन दिल्ली में बैठे थे, देवेंद्र फडणवीस जी बस दिल्ली मुंबई की यात्रा कर रहे थे, वहां से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, वहां पे सब व्यवस्था कर रहे थे, वहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट ले रहे थे और एक तरफ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की ट्रेड्स की सूची दे रहे थे और एक तरफ ये पूरी एजेंसी की डर से, वो रेड के डर से, एजेंसी के जो दबाव से, फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट से, कोई पद की लालच में ये सब ऑपरेशन हुआ है। अब देखिए, आप पहले जो देखिए सुप्रीम कोर्ट का कैसे क्या बोला रहा है, पहले सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट 11-12 जुलाई को सुनेगी, तो आपने और डिस्क्वालिफिकेशन में कुछ भी फैसला हो सकता था क्योंकि 13-14 विधायकों के खिलाफ हमने डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन की थी स्पीकर साहब के सामने, यानी डिप्टी स्पीकर साहब के सामने, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं अभी नहीं सुनेंगे, 11-12 जुलाई को सुनेंगे, यानी पूरा समय दिया। फिर उसके बाद उन्होंने फ्लोर टेस्ट परमिट कर दिया, फ्लोर टेस्ट में तो नंबर्स नहीं थे, हमारा ये कहना था कि ये जो डिफेक्शन हुआ है वो इंक्रीमेंटल है, धीरे 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 हुआ है। जिस समय हमने डिप्टी स्पीकर साहब के सामने एक दरख्वास्त रखी थी तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाते और उसके बाद वो अब फिर ट्रस्ट वोट का कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन वो नहीं होने दिया और उसके पहली जल्दबाजी में ट्रस्ट वोट का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत आश्चर्य की बात है। उसके बाद देखिए, अब जब गवर्नर साहब के पास हम फिर गए कि देखिए 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला है और उसमें शायद ये निलंबित हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो अभी आप जल्दबाजी मत करिए स्वेरिंग के, लेकिन स्पीकर साहब ने नहीं किया। रात को 9 बजे 10 बजे फडणवीस साहब मिले और एकदम अगले दिन उन्होंने स्वेरिंग इन करा दी। अब एक बार स्वेरिंग इन होने के बाद फिर हम गए कि आप अब स्पीकर साहब का चुनाव वगैरह की प्रक्रिया कर रहे हो उसके लिए भी रोकिए, 11 तारीख को क्या होता है देखिए। लेकिन अब क्या होगा कि उन्होंने एक इतवार का विशेष सत्र बुलाया है और इतवार के विशेष सत्र में वो विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे, जब एक बीजेपी का या कोई कोई एमएलए होगा, और जब बीजेपी का एमएलए स्पीकर बन जाएगा तो डिप्टी स्पीकर की कोई अहमियत नहीं रहेगी, और फिर वो स्पीकर साहब उन सब का वो मामले खारिज कर देंगे, यानी बात खत्म हो गई। तो देखिए विपक्ष के नाते, अब हम विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष के नाते हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी जो गैर कानूनी जो गैर संवैधानिक चीजें हो रही है उसका हम उजागर करें, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, गवर्नर साहब के पास जाए, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो कोई बात नहीं, देश की जनता देख रही है।
बिल्कुल, आपने बीजेपी की बात की तो चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता की चाहत नहीं थी। आज खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे की जो बगावत थी वो तो एक इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज थी।
देखिए ईडी एकनाथ शिंदे के अंदर काम करता है, और जो बाकी सब चीजें हो रही थी, आपने पता नहीं आपके लोग बता रहे होंगे क्या क्या बातें हो रही है, फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट की बात हो रही, क्या सब वो एकनाथ शिंदे जी कर रहे थे, ईडी उनके तहत चलती है। देखिए ये सब एक तरफ से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दबाव, दूसरी तरफ से कुछ और चीजें, और तीसरी तरफ से पद की ये लालच देना, ये सब चीजें होकर ये ऑपरेशन दिल्ली से चला है और पूरा हुआ है। अब देखिए उन्होंने देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इसका क्या कारण है? इसके कारण बहुत है, इनको सामाजिक समीकरण ठीक बैठाना है। एक मुख्यमंत्री मराठा समाज से मुख्यमंत्री देकर और वेस्टर्न महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री देकर वहां पे अपना एक फुटप्रिंट जमाना है, और दूसरी बात है कि उनको शिवसेना को समाप्त करना है, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व को समाप्त करना है, और उसके चलते मुंबई महापालिका का जो बीएमसी का चुनाव कुछ दो महीने में होने वाला है उसमें पहली बार भाजपा अपनी सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। तो ये मास्टर प्लान है, और ये ढाई साल तक जो अभी समय बचा है उसमें शिंदे साहब को शायद रखेंगे चाहे नहीं रहेंगे, लेकिन उनको फ्री हैंड नहीं दिया जाए। देवेंद्र फडणवीस की इच्छा के विरुद्ध उनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया है, क्योंकि वो सुपरवाइज कर सके जो उनके जूनियर रह चुके हैं एकनाथ जी शिंदे, कि वो कैसे काम करते। क्या एकनाथ शिंदे को फ्री हैंड मिलेगा जब एकनाथ जब देवेंद्र फडणवीस जी उनके पीछे बैठ के काम देख रहे होंगे? ये तो देखिए ये एक इनका एक ऑब्जेक्टिव है, मुंबई महापालिका को हथियाना, शिवसेना को खत्म करना, हिंदुत्व के वोटों का बंटवारा टालना, और फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा के सांसदों की संख्या बढ़ाना, ये उनकी रणनीति है। कोई बात नहीं, हम उसका पॉलिटिकल मुकाबला करेंगे, सड़क पे मुकाबला करेंगे, और जैसे हमारा महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है कायम है, हम तीनों दल साथ में लड़ेंगे। ये अल्टीमेटली पॉलिटिकल लड़ाई है, ये सिर्फ महाराष्ट्र हो रहा है ऐसे नहीं है, मुझे डर लग रहा है कि राजस्थान में पता नहीं क्या करेंगे, और वो एक कांग्रेस मुक्त एक ये विचारधारा की बात कर रहे हैं, और एक हमारा दुर्भाग्य से हमारा देश एक तानाशाही की ओर जा रहा है, वो एक लोकतंत्र के माध्यम से तानाशाही चुनेंगे अगर 2014 में कुछ अलग डिजाइन नहीं आए।
बिल्कुल, आपने महाविकास आघाड़ी का जिक्र किया, पृथ्वीराज जी आज उद्धव ठाकरे ने बयान में कहा है, उनके बयान को आप कैसे देखते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि शिवसेना का सीएम बना देते अगले ढाई साल भी, तो महाविकास आघाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती?
देखिए बात यह है कि 2019 के नवंबर में बीजेपी और शिवसेना चुनाव जीत गई थी, हम विपक्ष में बैठने को तैयार थे, लेकिन एक उनमें अनबन बनी, एक मौका सामने आया, मौका हमने वी ग्रैब्ड इट, तीनों दलों ने उसी समय निर्णय लिया कि अगर भाजपा को रोकना है तो हम तीनों को साथ में आके सरकार बनानी पड़ेगी। अगर शिवसेना और भाजपा में कोई झगड़ा नहीं होता तो उनकी सरकार बनी होती आज, पता नहीं कौन मुख्यमंत्री बता, उसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे शिवसेना का होता है या भाजपा का होता है, लेकिन वो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उनमें आपस में टकराव हुआ, कहीं ना कहीं वादा खिलाफी हुई, और हमें एक मौका मिला, अब उस मौके का हमने लाभ लिया, ढाई साल हमने सरकार चलाई, भाजपा को रोका। अब देखिए हम नहीं रोक सके क्योंकि ये सब संवैधानिक व्यवस्था जब है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे गवर्नर साहब हो, सब चीजें किस तरह से काम करी सब जनता देख रही है, अब हम विपक्ष में बैठ के रोकेंगे उनको।
आखिरी सवाल सर, कि शरद पवार को नोटिस मिला है ईडी का 2004 के हलफनामे को लेकर, किस तरह की चिंताएं आप लोगों में?
देखिए ये बिल्कुल किसी को ये पता नहीं है, देखिए ये इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने इनकम टैक्स को कहा है कि सभी विधायकों को, सभी सांसदों को जिन्होंने पिछले 10-15 साल में चुनाव लड़ा उनको इनकम टैक्स की नोटिस देगी, उनके आज की तारीख के उनकी क्या संपत्ति है उसको चुना कीजिए। मेरे पिछले मुझे खुद भी पिछले साल ये जानकारी मांगी गई थी इनकम टैक्स की तरफ से, हमने दे दिए। उन्होंने उस समय बताया था कि ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सभी की जांच हो। मुझे लगता है कि शायद भाजपा के सांसदों की भी इस तरह से जानकारी ली गई है। तो पवार साहब की भी जानकारी अगर ली होगी तो मुझे कोई आश्चर्य उसमें नहीं है। हाँ, ईडी की कार्रवाई जब होगी तब आश्चर्य होगा जरूर।
आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बेबाकी से आपने कई बातें हमसे कही हैं इसके लिए वाकई में शुक्रिया। और आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और अब हम रुक कर रहे हैं राजस्थान का। उदयपुर मामले के आरोपियों से बरामद की गई बाइक का नंबर 2611 है, ये नई जानकारी आज सामने आई। इसे रियाज से बरामद किया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि रियाज ने आरटीसी ऑफिस से मांग कर यह नंबर लिया था और जिसके लिए अलग से 5000 रुपए भी चुकाए थे। 2611 ही वो तारीख है जिस दिन मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस नंबर प्लेट से इस बात का पता चलता है कि रियाज के दिमाग में क्या चल रहा था। वहीं आज आपको बता दें, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई, इस मौके पर उदयपुर में धूमधाम से यात्रा निकली है। बीते दिनों की घटना के बाद से यहां तनाव की स्थिति बनी हुई थी, कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन कर्फ्यू के बाद भी इस यात्रा को इजाजत दी गई। इसके लिए शहर में भारी सुरक्षा के इंतजाम थे।
यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां हैं रथ यात्रा को लेकर, लेकिन प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती है। उदयपुर में टेंशन है, कर्फ्यू भी है, धारा 144 भी लगी हुई है, तो एक तरह से माहौल में काफी गर्मा गर्मी है। एक तरह से लोगों में आक्रोश है जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या हुई है। भैया, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे हादसा, तो लोग आम जनता क्या चाहती है और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं?
यहाँ से कोई शांति है, हमारी शांति बना रखे, हमारे यहाँ कोई माहौल अच्छा बना रखा, हमने हमारी तरफ से कोई घटना होने वाली, सब शांतिपूर्ण माहौल है हमारे तरफ।
शांति बनाई, शांति रहनी चाहिए मैडम, और माहौल अच्छा ही रहना चाहिए, शांति होनी चाहिए। और सभी लोग दुखी हो गए हैं, खाने पीने की से लेके परेशानी हो रही है, दूध पानी सब्जी से भी परेशानी हो रही है, और सभी को ये बात समझनी चाहिए और अपने अपने घरों में बैठना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम शांतिप्रिय ढंग से निकाल रहे हैं, सभी में सद्भावना बढ़े, प्रेम भाव बढ़े, इसलिए हम रैली निकाल रहे हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। और इस वर्ष जो एक निर्मम हत्याकांड हुआ है वो पूरा देश देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है, वो बहुत ही गलत हुआ है, उसके विषय में भी हमारा एक आक्रोश है, और वो उन जो दोषी है उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दे, इससे कम किसी को मंजूर नहीं है।
झीलों की नगरी उदयपुर, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर जो जघन्य अपराध हुआ है उसके बाद में चप्पे चप्पे पर पुलिस दिखाई दे रही है। एक समय में इस बाजार में पर्यटकों की आवाजाही रहती थी, पर्यटन व्यवसाय पर पूरी शहर की अर्थव्यवस्था निर्भर है, लेकिन जब से यहाँ पर कन्हैया लाल टेलर की हत्या हुई है, 4 दिन से कर्फ्यू है, काफी होटलों में जो बुकिंग्स थी वो सब कैंसिल हो चुकी हैं, एक पर्यटक भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, और अब पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनको चिंता है कहीं आगे जाकर ऐसा ना हो कि उदयपुर असुरक्षित हो जाए और लोगों को यहाँ पर डर लगे आने के लिए, क्योंकि काफी लोगों की आजीविका जो है पूरी तरह से उदयपुर में पर्यटन पर निर्भर है।
सद्भाव में दरारें तो आएगी, जिस हिसाब से कृत्य हुआ है, जिस हिसाब से उस आदमी का किया है, उससे पब्लिक में एक डर सा माहौल हो गया है। तो आमने सामने देखने में भी आदमी को एक डर लगता है, जो क्योंकि किसी के मन में घुस के कौन क्या कर रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड। और टूरिस्ट है, टूरिस्ट सबसे पहले अपनी सेफ्टी, जब घूमने आता है तो अपनी सेफ्टी को सबसे पहले देखता है, और उस सेफ्टी में यह है कि आदमी की कहीं गलियों में कल कुछ हो गया या रात को कुछ हो गया तो हु विल हमें कौन हेल्प करेगा उस चीज के लिए। और जिस हिसाब से लालगढ़ एक बहुत ही जाना माना वर्ल्ड में अच्छा नाम किया हुआ है और यहाँ दोनों कम्युनिटी साथ रहती है, तो कोई भी आता है तो एक संशय की नजर से हो ना हो, लेकिन देखता तो है ही।
मैडम डेफिनेटली हर आदमी यही चाहता है कि शांति और अमन रहे। अगर शांति रहेंगे तो हम भी धंधा कर सकेंगे और लोग भी कर सकेंगे। तो हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं शांति रहे। और आज हमारे जो रहे विशाल रथ यात्रा, हम सबसे यही निवेदन कर रहे हैं अपने शांति से निकालें और भगवान के मगन में निकालें।
उदयपुर वो शहर है जो आज की तारीख में आक्रोशित है कन्हैया लाल की हत्या को लेकर, लेकिन उदयपुर वो भी शहर है जहां पर्यटक आना पसंद करते हैं। वो भी शहर है जो हमेशा शांत रहा है, जहां दोनों समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर अपनी दिनचर्या गुजारते हैं और अपने धंधे पर लगे रहते हैं। यहां इस जगन्नाथ मंदिर से जो यात्रा निकली है पूरे शहर का भ्रमण करके शायद शांति का संदेश देकर वापस लौटेगी। उदयपुर से पवन कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
उधर मणिपुर के नोनी जिले के टुप्पुल में भूस्खलन से 20 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की चपेट में टुप्पुल यार्ड रेलवे में प्रादेशिक सेना का शिविर भी आया, जहां निर्माण का काम चल रहा था। अब 2400 घंटे राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट देखिए।
मणिपुर के नोनी जिले के नदी से एक्सकवेटर के जरिए शव निकाले जा रहे हैं, जिनमें प्रादेशिक सेना के कर्मी भी हैं। ये सब भूस्खलन के शिकार हुए। भूस्खलन की मिट्टी ने उस कैंप को तबाह कर दिया जो इस इलाके को मणिपुर से जोड़ने वाले मेगा रेलवे प्रोजेक्ट को सुरक्षा दे रहा था। 18 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। इम्फाल से 50 किलोमीटर दूर जहां हादसा हुआ, वहां बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जारी है। इसमें भारतीय सेना, एनडीआरएफ, असम राइफल्स और राज्य के बल सभी शामिल हैं।
Soft soiled. We are not able to make the road to cross the actual area. So we're using trucks, JCBs, personnel, and the army also with us, working together with coordination with the state government.
मणिपुर में जहां दुर्घटना हुई वहां से 500 किलोमीटर दूर असम के मोरीगांव जिले में मातम का माहौल है, क्योंकि यहां के 20 से ज्यादा लापता मजदूरों के बच्चों की उम्मीदें धूमिल पड़ती जा रही हैं।
Assumption is कि during this last few days,
हमें लगता है कि भारी बारिश की वजह से बहुत सारा पानी पहाड़ी के ऊपर जमा हो गया। पहाड़ी की क्षमता इतनी नहीं थी, इसीलिए पूरी पहाड़ी भूस्खलन के साथ गिर गई।
Lost the water retention capacity, the whole hill gave way.
2 महीने पहले ही असम के दीमा हसाओ का रेलवे स्टेशन बाढ़ में डूब गया था और भारी बारिश के कारण जमीन खिसकने से रेल की पटरियां भी बह गई थी। टुपुल में सायकॉम रतन और बीएम सुंजू के साथ गुवाहाटी से संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।
उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद इस बार 5% से भी कम हुई है, जबकि आटे की कीमत लगातार बढ़ रही है। इस महीने से आटा, दाल और चावल पर जीएसटी बढ़ने से कितना दाम बढ़ेगा, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट।
10 किलो के आटे का पैकेट 2 महीने के भीतर 340 रुपए से बढ़कर 380 रुपए हो गया। अब खुले में बिकने वाला आटा जो अभी 26 रुपए किलो बिक रहा है, 18 जुलाई के बाद महंगा हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के आटा, चावल और दाल पर भी 5% जीएसटी लगाया जाएगा, जिससे आम आदमी की दाल और रोटी भी महंगे हो जाएंगे।
अब देखिए 5% जो चीज 100 रुपए की आती थी, अब वो 105 रुपए किलो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाएगी। 5% जीएसटी जो खुली दालें, बिना ब्रांडेड की जो आटे, मैदा, ये सब आती थे
अभी। अच्छा, आटा जो पैकेट वाला आटा है,
हाँ जी,
वो कितने का है?
380 रुपए का सर आशीर्वाद
आटा बढ़ा है इसमें।
हाल फिलहाल में सर 40 रुपए थैली बढ़ चुका है, 4 रुपए केजी बढ़ चुका है थैली वाले आटे में।
थैली वाले आटा जो ब्रांडेड आटा है,
ब्रांडेड आटा आशीर्वाद शक्ति भोग ये सब आटे काफी पहले से चेंज हो गए हैं, नेचर फ्रेश।
और खुला अभी आटा जो है वो कितने में बिक रहा है और जीएसटी अगर लगने के बाद में कितने में बिकने की उम्मीद?
अभी तो सर 26 रुपए किलो बिक रहा है, हम होलसेल में बेचते हैं तो 26 रुपए किलो है, आगे थोड़ा जीएसटी लगने के बाद 2-3 रुपए किलो का इजाफा हो जाएगा 1-2 रुपए किलो का।
गेहूं की फसल तैयार होने के दौरान आटे के दाम क्यों बढ़ रहे हैं ये जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं हापुड़ में गेहूं के सरकारी खरीद केंद्र पर। हापुड़ में सरकार को किसानों से 36,000 टन गेहूं खरीदना था लेकिन महज 845 टन ही गेहूं खरीद पाई। ये हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है। आंकड़े देखें तो इस बार 60 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य था लेकिन महज 3.5 लाख टन ही खरीद हुई, यानी लक्ष्य का महज 5% ही सरकार खरीद सकी।
इस बार बाजार मूल्य एमएसपी 2025 से अधिक रहा है और किसानों को एमएसपी से अधिक मूल्य प्राप्त हुआ।
हालांकि गेहूं का दाम न बढ़े इसके लिए सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी है, साथ ही गरीबों को राशन में भी गेहूं की जगह चावल दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद गेहूं की फसल के दौरान आटे का दाम बढ़ना अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
कोरोना खत्म नहीं हुआ बल्कि देश दुनिया में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। फिलहाल 100 से ज्यादा देशों में इसके मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। महामारी में टीकाकरण प्रभावी है तो ध्यान से सही से टीकाकरण कराएं।
कोरोना फिर से पांव पसार रहा है, दुनिया के 110 देशों में मामले बढ़ रहे हैं लेकिन कोरोना के किसी वेरिएंट के खिलाफ टीका असरदार है। पर महज 58 देशों में ही 70% आबादी को अब तक दोनों टीके लगे हैं जबकि लक्ष्य तमाम देशों को लेकर था। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ लोगों की जान टीकों ने बचाई है।
The Lancet estimates that 20 million lives have been saved because of vaccines.
विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता ओमिक्रॉन के साथ ही बढ़ते मामलों के बीच दूसरे वेरिएंट को लेकर भी है क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग के आंकड़े घट गए हैं और मामले बढ़ रहे हैं। सीक्वेंसिंग के जरिए ही वेरिएंट की पहचान होती है।
I also call for accelerated efforts and incentives to be developed around the moonshot of developing a pan-coronavirus vaccine.
उधर बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता इस महीने से शुरू होने वाले धार्मिक यात्राओं और त्योहारों को लेकर है। ऐसे में राज्यों की लापरवाही भारी पड़ सकती है, तो हुक्मरान अपना काम करेंगे, ख्याल आपको और हमें भी रखना है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।